ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ 6 சாப்டர் 9 வ்ருத்தாசுர ராட்சஸ் கா ஆவிர்பாவ். ஸ்ரீ சுக்தேவ் கோஸ்வாமி நே கஹா, தேவதாவோ கே புரோஹித் விஸ்வரூப் கே தீன் சிர் தே, இன்மே சே ஏக் சே வஹ சோம்பான் கர்த்தா தா, தோ தூஸ்ரே சே மத்ரியாபான் ஔர் தீஸ்ரே சே போஜன் கிரஹண் கர்த்தா தா. ஹே ராஜா பரீட்சித், ஐசா மேனே வித்வானோ சே சுனா ஹை. ஹே மஹாராஜ் பரீட்சித், தேவதாகண் விஸ்வரூப் கே பிதா பக்ஷ சே சம்பந்தித் தே, அத விஸ்வரூப் சபோ கே சமக்ஷ அக்னி மே கீ கி ஆஹுதி இன் மந்த்ரோ கா உச்சாரண் கர்கே தே ரஹா தா. இந்திராய இதம் ஸ்வாஹா, யஹ ராஜா இந்திர கே லியே ஹை, ததா இதம் அக்னேயேன், யஹ அக்னி தேவ் கே லியே ஹை. வஹ மந்த்ர கா உச்சாரண் உச்ச ஸ்வர் சே கர் ரஹா தா ஔர் பிரத்யேக் தேவதா கோ உஸ்கா உச்சித் பாக் பிரதான் கர்தா ஜா ரஹா தா. வஹ யத்யபி தேவதாவோ கே நாம் சே யஜ்ஞ கி அக்னி மே கி ஆஹுதி டால் ரஹா தா, கிந்து தேவதாவோ கே பினா ஜதாயே வஹ அசுரோ கே நாம் கி பி ஆஹுதி டால்தா ஜாதா தா, க்யோங்கி வே உஸ்கி மாதா கே பக்ஷ சே சம்பந்தி தே. கிந்து ஏக் பார் ஸ்வர்க கே ராஜா இந்திர கோ பதா சல் கயா கி விஸ்வரூப் தேவதாவோ கோ தோகா தேகர் அசுரோ கி ஆஹுதியா தே ரஹா ஹை, அத வஹ அசுரோ த்வாரா பராஜித் கியே ஜானே சே அத்யதிக் பயபீத் ஓ உடா ஔர் அதீவ் க்ரோத் சே உஸ்னே விஸ்வரூப் கே தீனோ சிரோ கோ உஸ்கே கந்தே சே அலக் கர் தியா. தத் பஷ்சாத் சோம் ரஸ் பீனே வாலே சிர் பபீஹே மே சுரா பான் கர்னே வாலா சிர் கௌரயா மே ஔர் போஜன் करने वाला सिर तीतर में बदल गया. इंद्र इतना शक्तिशाली था कि यदि चाहता तो ब्रह्म हत्या के पाप फल को निरस्त कर सकता था, किंतु उसने हाथ जोड़कर पछताते हुए पाप भार को स्वीकार कर लिया. उसने एक वर्ष तक यातना भोगी और तब अपनी शुद्धि के लिए हत्या के पाप को पृथ्वी, जल, वृक्ष तथा स्त्रियों में बांट दिया. पृथ्वी ने राजा इंद्र से बदले में यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं भी गड्ढे होंगे वे समय पर अपने आप भर जाएंगे, ब्रह्म हत्या के पापों का चातुर्यांश स्वीकार कर लिया. उन पापों के कारण ही हमें पृथ्वी पर अनेक मरुस्थल दिखाई पड़ते हैं. वृक्षों ने इंद्र से बदले में यह वरदान लिया कि काटे जाने पर भी उनकी शाखाएं फिर से उग आएंगी. ब्रह्म हत्या के पाप फल का चतुर्थांश ले लिया. ये पाप फल वृक्षों से निकलने वाले रस के रूप में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इस रस को पीना वर्जित है. स्त्रियों ने इंद्र से बदले में यह वरदान प्राप्त करके कि वे अपनी काम वासनाओं को जब तक वे भ्रूण के लिए हानिकारक ना हो गर्भकाल में भी निरंतर पूरी कर सकेंगी, पाप फलों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया. फलस्वरूप स्त्रियों में प्रत्येक मास रजो दर्शन होता है. जल ने इंद्र से बदले में यह वर प्राप्त करके कि किसी अन्य वस्तु में जल मिलाने से उसका आयतन बढ़ जाएगा, पाप फलों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया. इसलिए जल में बुलबुले तथा फेन उठते हैं. मनुष्य को चाहिए कि इन्हें हटाकर ही जल भरे. विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान किए. उसने अग्नि में यह उच्चारण करके आहुति डाली, हे इंद्र के शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो, तुम अविलंब अपने शत्रु का वध करो. तत्पश्चात अनहरवान नामक यज्ञ अग्नि के दक्षिणी कोने से एक भयावना व्यक्ति प्रकट हुआ जो युगांत में समग्र ब्रह्मांड का विनाश करने वाले के समान प्रतीत हो रहा था. इस असुर का शरीर चारों दिशाओं में छोड़े हुए बाण के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा. वह लंबा और काला था, मानो कोई जला हुआ पर्वत हो. वह संध्याकालीन बादलों के समूह की भांति दीप से युक्त था. असुर के शरीर के बाल तथा सभी दाढ़ी मूछें पिघले तांबे के रंग की थी. उसके नेत्र मध्याकालीन सूर्य की भांति भेदने वाले थे. वह दुर्जय था तथा और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपने प्रज्वलित त्रिशूल पर तीनों लोकों को धारण किए हो. उच्च स्वर करके उसके नाचने और गाने से सारी पृथ्वी हिल उठी मानो भूकंप आया हो. वह पुनः पुनः जम्हाई ले रहा था मानो कंदरा के समान. अपने विशाल मुख में वह सारे आकाश को निगल जाना चाहता हो. ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह आकाश के सभी तारों को अपनी जीभ से चाट रहा हो और अपने लंबे पैने दांतों से संपूर्ण ब्रह्मांड को खाने जा रहा हो। उस विराट असुर को देखकर सभी व्यक्ति डर के मारे इधर उधर चारों दिशाओं में भागने लगे। उस अत्यंत भयानक असुर ने, जो वास्तव में त्वष्टा का ही पुत्र था, अपने तप बल से सभी लोगों को आच्छादित कर लिया था, इसलिए वह वृत्र अर्थात प्रत्येक वस्तु को आच्छादित करने वाला कहलाया। इंद्र इत्यादि सभी देवता अपने सैनिकों सहित उस असुर पर टूट पड़े। वे अपने दिव्य धनुष बाणों तथा अन्य हथियारों से उसे मारने लगे, किंतु वृत्रासुर उनके सभी हथियार निगलता गया। उस असुर की शक्ति देखकर सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित तथा निराश हो गए और उनकी सारी शक्ति जाती रही। अतः वे सभी परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने के निमित्त एकत्र हुए। देवताओं ने कहा, तीनों लोकों की संतुष्टि पंच तत्वों क्षिति जल पावक गगन तथा समीर से हुई है, जिनको ब्रह्मा आदि विभिन्न देवता अपने वश में रखते हैं। हम काल से अत्यंत भयभीत हैं कि वह हमारे अस्तित्व का अंत कर देगा, इसलिए वह जैसा चाहता है हम वैसा कार्य करके उसको अपनी भेंट चढ़ाते हैं। किंतु काल श्री भगवान से स्वयं डरता है, अतः हम उसी एकमात्र परमेश्वर की आराधना करें जो हमारी पूरी तरह से रक्षा कर सकता है। भगवान समस्त सांसारिक कल्पना से रहित और सदैव विस्मय विहीन है। वे सदैव प्रसन्न चित एवं अपनी स्वरूप सिद्धि से परम संतुष्ट रहने वाले हैं। उनकी कोई सांसारिक उपाधि नहीं होती, अतः वे स्थिर एवं विरक्त रहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के एकमात्र आश्रय हैं। अतः जो मनुष्य किसी अन्य से अपनी रक्षा की कामना करता है, वह अवश्य ही बड़ा मूर्ख है और कुत्ते की पूंछ पकड़ कर समुद्र को पार करना चाहता है। पहले राजा सत्यव्रत नामक मनु ने मध्य अवतार के सिंह ने समग्र ब्रह्मांड रूपी छोटी नौका को बांधकर आत्मरक्षा की थी। उनकी कृपा से मनु ने बाढ़ के महान संकट से अपने को बचाया था। वे ही मध्य अवतार त्वष्टा के पुत्र से उत्पन्न इस गंभीर संकट से हमारी रक्षा करें। सृष्टि के प्रारंभ में प्रचंड वायु से बाढ़ के जल में भयानक लहरें उठने लगीं। इनसे ऐसा भयावना शोर हुआ कि ब्रह्मा जी अपने कमल आसन से प्रलय जल में प्रायः गिर पड़े, किंतु भगवान की सहायता से वे बच गए। उसी प्रकार हम भी भगवान से वह भयावह स्थिति से अपनी रक्षा की आशा करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति से हमारी सृष्टि की और जिनकी सृष्टि से हम इस विश्व की सृष्टि का विस्तार करते हैं, वे निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु हम उनके रूप को नहीं देख पाते। हम इसलिए देखने में असमर्थ हैं क्योंकि हम सभी अपने आप को पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में मानते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य अंतरंगा शक्ति से अनेक दिव्य शरीरों में विस्तार करते हैं, यथा देवताओं की शक्ति के अवतार वामन देव, ऋषियों के अवतार परशुराम, पशुओं के अवतार नरसिंह देव एवं वाराह, और जलचरों के अवतार मत्स्य तथा कूर्म। वे सभी प्रकार की जीवात्माओं के बीच विभिन्न दिव्य देह धारण करते हैं और मनुष्यों के बीच विशेष रूप से भगवान कृष्ण तथा राम के रूप में प्रकट होते हैं। अपनी अहेतुकी कृपा से वे असुरों द्वारा सदा सताए गए देवताओं की रक्षा करते हैं। वे समस्त जीवात्माओं के पूज्य श्री विग्रह हैं। वे परम कारण हैं और स्त्री तथा पुरुष की सृजन शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि वे इस ब्रह्मांड से पृथक हैं, वे विराट रूप में विद्यमान रहते हैं। अतः अपनी इस भयभीत अवस्था से हमें चाहिए कि उनकी शरण ग्रहण करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि परमात्मा हमें अपना संरक्षण प्रदान करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सब समस्त देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तो श्री भगवान हरि शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए पहले उनके अंतःकरण में और तब उनके सम्मुख प्रकट हुए। श्री भगवान को घेरे हुए उनके 16 पार्षद उनकी सेवा कर रहे थे। वे आभूषणों से अलंकृत थे और भगवान के ही समान लग रहे थे, किंतु श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि से रहित थे। हे राजन, जब देवताओं ने इस मुद्रा से शरत्कालीन कमल की पंख खुड़ियों के समान नेत्रों वाले स्मित हास से युक्त श्री भगवान को देखा तो वे प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। फिर वे धीरे धीरे उठे और अपनी स्तुतियों द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप यज्ञ फल को देने में समर्थ हैं। आप ही वह काल हैं जो इन फलों को कालांतर में नष्ट कर देता है। आप असुरों को मारने के लिए चक्र को चलाते हैं। हे अनेक नाम धारण करने वाले भगवान, हम लोग आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे परम नियामक, आप तीनों गंतव्यों स्वर्ग लोक में पहुंचना, मनुष्य के रूप में जन्म तथा नरक में यातना को वश में रखने वाले हैं। फिर भी आपका परम धाम वैकुंठ लोक है। चूंकि आपके द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद हम प्रकट हुए हैं, अतः हम आपके कार्यकलापों को समझने में असमर्थ हैं। अतः हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए नमस्कार करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, परम अनुभव साक्षात मंगल, हे परम वरदान स्वरूप, अत्यंत कृपालु तथा अपरिवर्तनीय, हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही पार पाते हैं जो भक्ति योग में पूर्णतया समाधि मग्न होकर सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं। वे अपने ध्यान को आप में ही केंद्रित रखते हैं, अतः अपने शुद्ध अंतःकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदयों का अंधकार पूर्णतया हट जाता है और आपका साक्षात्कार होता है, तब उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के सिवाय और कोई आपका अनुभव नहीं कर पाता, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और अपरिवर्तित रूप में ही इसके भौतिक अव्ययों की पूर्ति करते हैं। अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं। तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, अतः आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है। यही हमारी जिज्ञासाएं हैं। समान बद्ध जीव भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। क्या आप भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर के इसमें सामान्य मनुष्यों की भांति इस संसार में उपस्थित रहते हैं? क्या आप काल, पूर्व कर्म आदि के वशीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्मों को भोगते हैं? अथवा इसके विपरीत, क्या आप ऐसे उदासीन साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं जो आत्मनिर्भर, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित तथा आध्यात्मिक शक्ति से सदैव परिपूर्ण रहता है? हम निश्चित रूप से आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते। हे भगवान, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है। हे ईश्वर, चूंकि आप परम पुरुष अनंत दिव्य गुणों के आगार परम नियंता हैं, अतः आपकी असीम महिमा बद्ध जीवों की कल्पना से परे है। अनेक सिद्धांतवादी बिना जाने ही वास्तव में सच क्या है, सत्य तथा मिथ्या के विषय में तर्क करते हैं। उनके तर्क झूठे होते हैं और फैसले अनिर्णित, क्योंकि उनके पास आपको जानने का कोई वैध प्रमाण नहीं है। चूंकि उनमें मन धर्म ग्रंथों के झूठे निष्कर्षों से विशुद्ध रहते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है। यही नहीं, सही सही निष्कर्ष प्राप्त करते समय उनकी उत्कृष्टता दूषित रहती है, जिससे उनके सिद्धांत आपका वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं। क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे हैं, आप अद्वितीय हैं, अतः आप में करणीय तथा अकरणीय, सुख तथा दुख जैसे विरोध नहीं है। आपकी उस शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या असंभव है? आपकी स्वाभाविक स्थिति द्वैत से रहित, अतः आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं। मोहग्रस्त पुरुष रस्सी को सर्प मान बैठता है, अतः उसे रस्सी भय उत्पन्न करती है। किंतु समुचित बुद्धि वाले मनुष्य में रस्सी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि वह इसे केवल रस्सी ही जानता है। इसी प्रकार सबों के हृदयों में उनकी बुद्धि के ही अनुसार परमात्मा स्वरूप आप भय या निर्भीकता का भाव उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु आप स्वयं अद्वैत हैं। विचार विमर्श से यह देखा जा सकता है कि परमात्मा परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व वे ही हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति इस संसार का कारण है, किंतु यह शक्ति उन्हीं से उद्भूत है। अतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं और बुद्धि तथा इंद्रियों के प्रकाशक हैं। वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में देखे जाते हैं। उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाएगी। परमात्मा रूप में आप परम नियंता ही एकमात्र शेष बचे हैं। अतः हे मधुसूदन, जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र की एक भी अमृतमयी बूंद को चख लिया है, उनके मन में निरंतर आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती है। ऐसे महात्मा भक्त दृश्य तथा श्रवणेन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले तथा कथित भौतिक सुख की झलक को भूल जाते हैं। ऐसे भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर सभी जीवात्माओं के वास्तविक मित्र होते हैं। वे अपने मन को आप में समर्पित करके दिव्य आनंद उठाते हुए जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करने में कुशल होते हैं। हे भगवान, आप ऐसे भक्तों के, जिन्हें इस भौतिक जगत में कभी वापिस नहीं आना पड़ता, प्रिय मित्र एवं आत्मा है। भला वे आपकी भक्ति को किस प्रकार त्याग सकते हैं? हे भगवान, हे साक्षात त्रिलोकी, तीनों लोकों के जनक, हे वामन अवतार के रूप में तीनों लोकों के पराक्रम, हे नृसिंह के त्रिनेत्र रूप, हे तीनों लोकों के परम सुंदर पुरुष, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी जिसमें मनुष्य तथा दैत्य और दानव भी सम्मिलित हैं, आपकी ही शक्ति के अंश हैं। हे परम शक्तिमान, जब जब असुर शक्तिशाली हुए हैं, तब तब उनकी आप उन्हें दंड देने के लिए विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुए हैं। आप भगवान वामनदेव, राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। कभी आप पशु के रूप में प्रकट होते हैं यथा भगवान वराह, तो कभी मिश्रित अवतार के रूप में यथा भगवान नृसिंह तथा भगवान हयग्रीव, और कभी जलचर के रूप में यथा भगवान मत्स्य तथा भगवान कूर्म। आपने ऐसे अनेक रूप धारण करके सदैव असुरों तथा दानवों को दंड दिया है। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यदि आवश्यक समझे तो महाअसुर वृत्तासुर को मारने के लिए आज किसी अन्य अवतार के रूप में प्रकट हों। हे परम रक्षक, हे पितामह, हे परम पवित्र, हे परमेश्वर, हम सभी आपके चरण कमलों पर समर्पित हैं। दरअसल हमारे मन ध्यान में प्रेम पाश द्वारा आपके चरणारविंद में बंधे हुए हैं। अब आप अपना अवतार रूप प्रकट कीजिए। हमें आप अपना शाश्वत दास तथा भक्त मानकर हम पर प्रसन्न हो और हमारे ऊपर दया करें। आप अपनी प्रेम पूर्ण चितवन, शीतल तथा दयापूर्ण मनमोहक हंसी तथा सुंदर मुख से झर्रे वाले अमृत शब्दों से हम सबों की उस चिंता को दूर करें जो वृत्तासुर के कारण उत्पन्न हुई है और सदैव हमारे हृदयों को कष्ट देती है। हे भगवान, जिस प्रकार अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियां पूर्ण अग्नि का कार्य करने में असमर्थ हैं, वैसे ही आपकी चिंगारी रूप हम सभी अपने जीवन की आवश्यकता बता पाने में असक्षम हैं। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, अतः हमें आपको बताने की क्या आवश्यकता? आप सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आप दृश्य जगत के आदि कारण, इसके पालक तथा संपूर्ण सृष्टि की के संघारता हैं। आप अपनी दिव्य तथा भौतिक शक्तियों से लीलाएं करते रहते हैं, क्योंकि आप ही इन समस्त शक्तियों के नियामक हैं। आप इन विभिन्न शक्तियों के नियामक हैं। आप सभी जीवों के भीतर दृश्य सृष्टि में और उससे परे भी रहते हैं। आप अंतःकरणों में परब्रह्म के रूप में और बाह्यतः भौतिक सृष्टि में अव्ययों के रूप में स्थित हैं। अतः यद्यपि आप विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न कालों तथा स्थानों और विभिन्न देहों में प्रकट होते रहते हैं, तो भी हे भगवान, आप ही समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वास्तव में आप ही मूल तत्व हैं। आप समस्त गतिविधियों के साक्षी हैं, किंतु आकाश के समान महान होने के कारण किसी के द्वारा स्पृश्य नहीं है। आप परब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु के साक्षी हैं। हे भगवान, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। हे भगवान, आप सर्वज्ञाता हैं, अतः आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके चरण कमलों की शरण में क्यों आए हैं, जिनकी छाया समस्त भौतिक अशांतियों से छुटकारा दिलाने वाली है। क्योंकि आप परम गुरु हैं और सब कुछ जानते हैं, अतः हमने आदेश प्राप्त करने के लिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। कृपया हमारे वर्तमान दुखों को दूर करके हमें शरण दीजिए। आपके चरण कमल ही पूर्ण समर्पित भक्त के एकमात्र आश्रय है और इस भौतिक जगत के संतापों को शमित करने के एकमात्र साधन है। अतः ही परम नियंता हे भगवान श्री कृष्ण, त्वष्टा के पुत्र इस घातक असुर वृत्तासुर का संहार कीजिए, जिसने हमारे समस्त शस्त्राशस्त्र युद्ध की सारी सामग्री और हमारे बल और तेज को निगल रखा है। हे भगवान, हे परम शुद्ध, आप सबों के अंतःस्थल में रहते हैं और बद्ध जीवों की समस्त आकांक्षाओं तथा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। श्री कृष्ण के रूप में विख्यात हे भगवान, आपका यश अत्यंत प्रकाशमान है, आपका आदि नहीं है क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। शुद्ध भक्त इससे परिचित है क्योंकि आप शुद्ध तथा सत्यनिष्ठ के लिए सुगम है। जब करोड़ों वर्षों तक भौतिक जगत में भटकने के बाद बद्ध आत्माएं आपके चरण कमलों पर मुक्त होकर शरण पाती हैं, तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अतः हे भगवान, हम आपके चरणारविंद को सादर नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार से भगवान की सच्ची स्तुति की तो उसे उन्होंने कृपा पूर्वक सुना और प्रसन्न होकर देवताओं को उत्तर दिया। श्री भगवान ने कहा, हे प्यारे देवों, तुम लोगों ने अत्यंत ज्ञान पूर्वक मेरी स्तुति की है, जिससे मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मनुष्य ऐसे ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है और मेरे उच्च पद को स्मरण करता रहता है, जो भौतिक जीवन की स्थितियों के ऊपर है। ऐसा भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर स्तुति करने पर शुद्ध हो जाता है। मेरी भक्ति करने का यही स्रोत है। हे बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि यह सत्य है कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, तो भी शुद्ध भक्त जिसका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थिर है, वह मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी नहीं मांगता। जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं, वे कृपण कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता हित को नहीं जानते। यही नहीं, यदि कोई ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है, उसे भी मूर्ख समझना चाहिए। भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसे कार्यों में सहायता करना तो दूर रहा। ऐसा भक्त इस अनुभवी वैद्य के समान है, जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। हे मघवा इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें महान साधु दधीची के पास जाने की राय देता हूँ। वे ज्ञान व्रत तथा तपस्या में अत्यंत सिद्ध हैं और उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। अब देर ना लगाओ, उनके पास जाकर उनका शरीर मांगो। ऋषि दधीची ने, जो दधीची के नाम से भी विख्यात हैं, ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात किया था और फिर उसे अश्विनी कुमारों को दिया। कहा जाता है कि दधीची ने उनको अश्वमुख घोड़े के मुंह से मंत्र दिए, इसलिए वे मंत्र अश्वशिर कहलाते हैं। ऋषि दधीची ने ये मंत्र प्राप्त कर अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। दधीची का नारायण कवच नामक अभेद्य कवच त्वष्टा को मिला, जिसने उसे अपने पुत्र विश्वरूप को दिया और जिससे तुमने इसे प्राप्त किया है। इस नारायण कवच के कारण दधीची का शरीर अब अत्यंत पुष्ट है, अतः तुम जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो। जब तुम्हारी ओर से अश्विनी कुमार दधीची का शरीर मांगेंगे, तो वे स्नेहवश अवश्य दे देंगे। इनमें संदेह मत करो, क्योंकि दधीची धर्म के ज्ञानी है। जब दधीची तुम्हें अपना शरीर दे देंगे, तो विश्वकर्मा उनकी हड्डियों अस्थियों से एक वज्र तैयार कर देगा। यह वज्र मेरी शक्ति के से युक्त होगा, होने के कारण निश्चित रूप से वृत्तासुर का वध कर डालेगा। जब वृत्तासुर मेरे आत्मबल ब्रह्म तेज से मर जाएगा, तो तुम्हें पुनः अपना तेज आयुध और तथा संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। यद्यपि वृत्तासुर तीनों लोकों को विनष्ट कर सकता है, किंतु तुम मत डरो कि वह तुम्हें हानि पहुंचाएगा। वह भी भक्त है और तुमसे कभी भी द्वेष विद्वेष नहीं करेगा। हरे कृष्णा।